ओम शांति। कुछ पलों के लिए हम सभी अपने मन को एकाग्र करते हुए चारों ओर से ध्यान को समेटते हुए ब्रिकुटी के मध्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए अपने स्वरूप को अपने तीसरे नेत्र से निहारते हुए मैं एक चेतन शक्ति आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक के बीच चमक रहा हूं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता की संतान शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाती हूं। गौर करें मेरे मस्तक के बीच शांति के परकंपन महसूस करें इन्हें। और ये शांति के परकंपन मेरी आत्मा से निकलते हुए पूरे ब्रेन में ब्रेन को एक्टिव करते हुए इस शांति के परकंपन पूरे चेहरे में गर्दन से होते हुए दोनों बाहों में हाथों में हाथों की अंगुलियों तक गौर करें ये प्रकाश गर्दन से होते मेरे हार्ट में प्रवेश कर रहा है। हार्ट की एक एक आर्टरी को खोलते हुए पूरी एकाग्रता से इस प्रकाश को हार्ट में जाते देखे। ये प्रकाश मेरे लंग्स को क्लीन क्लियर करते हुए पूरे पेट पाचन तंत्र लीवर किडनी पनक्रियाज में कमर पेट रीढ़ की हड्डी और सातों चक्रों में ये प्रकाश बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहा है। ये प्रकाश टांगों से होते घुटने, पिंडलियां, पैरों की एड़ियों और पंजों में, पांव के अंगूठे से सिर तक अपने शरीर को परमात्मा ऊर्जा से भरा हुआ देखें। मेरा अंग अंग इस परमात्मा ऊर्जा से स्वस्थ बनता जा रहा है। पूरे शरीर को लाइट का देखे। अंग अंग लाइट का और इस लाइट के शरीर में दोनों ब्रिकुटियों के बीच मैं आत्मा सीता रहा, प्रभु का प्यारा, सृष्टि के नियंता की सर्वश्रेष्ठ रचना में इसी स्वरूप में स्थित होते हुए आइए आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर आज का ये सेशन और उसमें हम सभी के बीच पधारे हैं हमारे महान वक्तागण, हमारे सम्माननीय अतिथि और आप सभी बाबा के इस घर में पधारे हुए, प्रभु के निमंत्रण पर आए हुए उस प्रभु के मेहमान, या यूं कहें उनके बहुत बहुत सिकिलदे बच्चे, उनके प्यारे बच्चे। तो एक बार अपने लिए इस प्रभु के घर में अपना स्वागत करते हुए जोरदार तालियां, ऐसा समझें कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं इस घर में। तो मैं सबसे पहले हमारे इस मंच की शोभा, हमारे बीच में हमारे वक्तागण, उनको मैं बहुत दिल की गहराई से इस मंच का सम्मान बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन बीके डॉक्टर अरुणा दीदी जी, आप अटलाद्रा वडोदरा से हमारे बीच पधारे हैं। 35 वर्षों से आप परमात्म कार्य में संलग्न हैं। आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप इस मंच की शोभा हैं। आपके साथ आज की हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारी ओनमिला दीदी जी, जो शांतिवन, जो मधुबन में ही समर्पित रूप से 40 वर्षों से भी ज्यादा आपको हो गए बाबा की इन सेवाओं में, आप हमारे मध्य हैं। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आसन को सजाइए। हमारी आदरणीय उर्मिला दीदी जी, आप सह संपादिका हैं ज्ञान अमृत और आप हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत आदर और सम्मान करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्माननीय साइंटिस्ट हमारे दिवेश भाई जी, दिवेश मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फॉर्मर CGM ONGC वडोदरा, आप हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत सम्मान है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपके साथ साथ हमारे बीच में RJ नापा जी, आप भी हमारे बीच बलसाड़ से आए हैं, आप उद्योगपति हैं, आपका बहुत बहुत सम्मान है, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो आज हमारा ये मंच सज करके तैयार है परमात्मा के चुने हुए महान रतन, जिन एक एक पर भगवान की नजर गई है, उसने ऐसा देखा है कि ये वो आत्माएं हैं जो मेरे इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मेरे मददगार बन सकते हैं। तो ऐसी आत्माओं से ये मंच सजा है और इस मंच के साथ साथ हम उस परमपिता परमात्मा को भी बहुत दिल से आवाहन करेंगे, निमंत्रण देंगे कि हम सभी के साथ आप भी इस मंच पर शोभायमान हो जाएं, अब उस सृष्टि नियंता के लिए, जगत नियंता के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उसके बिना तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं है। तो उस प्यारे पिता परमात्मा को भी अपने बीच विराजित करते हुए अभी हम 3 मिनट के लिए उस प्यारे प्रभु की याद में चलते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, प्यारे प्रभु को याद करेंगे। प्रभु यादों के साथ साथ अभी मैं बहनों से नम्र अनुरोध करूंगी कि मंच आसीन हमारे आतिथियों का और राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी हमारी दीदियों का बैजेस और बुक्के से स्वागत करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहने, हमारी अरुणा जी का स्वागत हो रहा है बैज और बुके के द्वारा, जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करते रहेंगे। हमारे भ्राता RJ नापा जी का स्वागत हो रहा है, बहुत बहुत दिल से स्वागत अभिनंदन है आपका। द्वेश मिश्रा भाई जी का स्वागत हो रहा है, हमारे उर्मिला दीदी जी का स्वागत हो रहा है, इस स्वागत के श्रृंखला में हम आप सभी से भी अनुरोध करेंगे, एक बार सभी अपना लेफ्ट हैंड आगे करेंगे और अपनी रिंग फिंगर को इसमें टच करेंगे, जिससे हम सभी तिलक लगाते अपनी उंगली को अपनी हथेली में टच करते हुए फील करें कि आपके हाथ में प्रभु ने तिलक दिया है और इस तिलक को बड़े प्यार से अपने मस्तक में टच करें। फील करें परमात्मा ने विजयी तिलक, स्वागत का तिलक आपके मस्तक में भी लगा दिया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जैसे अंबर की शोभा तारे हैं, चमन की शोभा बहारे हैं, इस महफिल की शोभा आप हैं, जो आज यहाँ पधारे हैं, जो आज यहाँ पधारे हैं, आप सभी इस स्थान की शोभा हैं। इसलिए आज का ये शुभ दिन हम ये कहेंगे कि परमात्मा ने पूरे विश्व में से आप सभी को चुन करके अपनी इस पावन स्थली पर आमंत्रित किया है। वाया मीडिया कोई भी बना होगा, लेकिन निमंत्रण उस परमात्मा का था। तो आज हम सभी तीन दिन से जो विषय सुन रहे हैं, न्यू विजन फॉर न्यू इरा के अंतर्गत कॉल ऑफ टाइम, उसके साथ विषय क्या लिया गया, बिल्डिंग सस्टेनेबल सिस्टम। किस तरह से ये सिस्टम जो है वो स्थिर रहे, क्योंकि समय की ये पुकार है। इसका मतलब समय में कुछ गड़बड़ आई है, सिस्टम कुछ चरमराया है, कुछ हिला है, कुछ अप डाउन हुआ है। क्योंकि एक समय था जब समाज, परिवार और संबंध और वातावरण सब कुछ स्थिर था, जिसको हम सतयुगी संसार कह सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात पश्चात देखा गया कि सब कुछ आज अस्थिर हो जाता है, और वो ऐसा जो हुआ है उसको पुनः स्थिर करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम देख रहे हैं कि महान तपस्वी पूरा जी जान लगा करके, पूरी लगन के साथ हम सभी को वो दे देना चाहते हैं जो उन्होंने वर्षों से अपने जीवन में एकत्र किया है। वो कुछ घंटों और कुछ दिनों में हमें वो सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं शिवानी दीदी तीन तीन सेशन लेकर के वो सब कुछ देना चाह रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए कि आज के समय में अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो स्थिरता हमारे समाज की भविष्य में रहने के लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक संसाधनों को खत्म किए बिना अस्तित्व में रहने के लिए विकसित होने की क्षमता है। लेकिन सतत विकास सिस्टम में प्रारंभिक अवधारणा 1972 में पेश की गई, और इसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के मुद्दों में आपसी संबंध को पहचानने वाले दृष्टिकोण के रूप में अपनाया गया। दुनिया में स्थिरता चार प्रकार की कही जाती है, मानवीय, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। और आज हम देखते हैं इस चार प्रकार की स्थिरता के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के कॉल ऑफ टाइम, मानव के सतत विकास के लिए विशेष ब्रह्मा कुमारीज एक अद्वितीय संगठन है जो मानव समाज के विकास और संतुलन को समझने और सुधारने का संकल्प रखता है। इसका उद्देश्य मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करना, समाज को नए उत्थान और दैवी सभ्यता, जिसमें स्वस्थ, समृद्ध और सुख शांति से संपन्न जीवन की दिशा की ओर अग्रसर होना है। ऐसे समाज की कल्पना के लिए हमारा ये सीओ विंग जो है वो कार्यरत है, और पर्यावरण को भी बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। तो उसके अंतर्गत आज जो विषय लिया गया है, बिल्डिंग सस्टेनेबल सिस्टम, उसको आज मुख्य वक्ता के रूप में स्पष्ट करने के लिए हम सभी के बीच में हमारी आदरणीय उर्मिला दीदी जी, जो शांतिवन में सेवारत हैं, और आप राजयोगिनी, और हमारी यूं कहें कि बहुत बहुत अनुभवी वक्ता हैं। आप का जन्म 1964 में हुआ। एमए इंग्लिश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आपने की और आप सदा ही मेरिट में रही हैं, मेधावी छात्रा रही हैं और 1981 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 85 से आपने अपने इस जीवन को परमात्म कार्य के लिए, सेवाओं के लिए समर्पित किया और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माउंट आबू मुख्यालय में राजयोग शिक्षिका के रूप में संयुक्त संपादिका ज्ञानमृत मासिक पत्रिका व सह संपादिका त्रैमासिक पत्रिका हरियाली। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों जैसे कि भारत एकता युवा पदयात्रा, साइकिल अभियान, शिव संदेश, रथ यात्रा, महिला सशक्तिकरण, इसके साथ साथ मूल्य निष्ठ मीडिया अभियान, संपूर्ण ग्राम विकास अभियान, इसके साथ साथ बहुत से अभियान और नेपाल में भी आपने सेवाएं दी हैं। अनेक आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भिन्न भिन्न विषयों पर संबोधित किया है। इसके साथ साथ बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक विपत्तियों में राहत शिविर लगाने के अनुभव भी आपको हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिफ्रेशर कोर्सेज, भिन्न भिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी, उनमें भी आपका योगदान रहता है। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली जीने के लिए अनेक तरह के मैनेजमेंट कोर्सेज आप करवाते हैं। आपने अपनी सेवाएं विधायक क्लब सभागार, बोकारो स्टील इंडस्ट्री, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कैंपस, लिबर्टी शूज, कोल माइनिंग और वैज्ञानिक शोध संस्थान, कॉलेज कैंपस और भिन्न भिन्न स्थानों पर जैसे कि क्रिबको, टीटीसी, रेलवे इत्यादि अनेक स्थानों पर आपने अपने प्रवचन दिए हैं। अनेका अनेक आत्माओं को आपने अपने इन अनुभवों से लाभान्वित किया है। आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। हमने आपको बहुत छोटे पन में, जब हम बच्चे थे तब से देखा, जब हम भी छोटी क्लास में पढ़ते थे, आप बहुत ही नम्रता की मूर्त हैं, स्नेह की मूर्त हैं और धारणाओं की आप खान हैं। ऐसी उर्मिल दीदी जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, धरती सा धीरज दिया, आसमां सी ऊंचाई, खुदा ने जीवन तराश कर आप जैसी हस्ती बनाई, लगते सामान्य पर खास हैं आप, जीता जागता हुल्लास हैं आप, रोक सके ना कोई अंधेरा जिसे, वही ज्ञान सूर्य परमात्मा का प्रकाश है आप, वही ज्ञान सूर्य परमात्मा का प्रकाश है आप। ऐसी हमारी आदरणीय उर्मिल दीदी जिससे मैं नम्र अनुरोध करूंगी कि आज के विषय पर आप अपना मुख्य वक्तव्य हम सभी के सन्मुख रखेंगे। उर्मिल दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारी प्रिय अरुणा बहन, निर्मला बहन, हमारे अतिथि भ्रातागण, सभा में विराजमान आप सभी शिव बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय बहुत ही सामयिक है। हिंदी में इसका अर्थ है टिकाऊ प्रणाली का निर्माण। अभी अभी बहन जी कह रही थी कि जो चार क्षेत्र हैं, मानवीय, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, इन चारों में स्थिरता चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन चारों के मूल में सबसे पहले मानवीय स्थिरता है, क्योंकि मानव स्थिर होगा तो समाज स्थिर होगा, उसके बाद अर्थ और पर्यावरण तो अपने आप ही स्थिर हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ, जिससे हमें समझ आएगा कि मानवीय जीवन में स्थिरता कैसे आए, क्यों विलुप्त तो हो रही है और उसके क्या क्या घातक परिणाम हो रहे हैं। एक अच्छे शिक्षित परिवार का एक बच्चा है। माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़े और बहुत ऊंचे स्तर पर जाए, उसे पूरी फैसिलिटीज देते हैं। इकलौता बेटा है वो घर का, अलग से कमरा, कंप्यूटर, कुछ समय के बाद उसे गाड़ी भी दे देते हैं और उसे पूरी फ्रीडम है, खुला पैसा मिलता है और बच्चा भी पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, हर साल अपनी क्लास को टॉप करता है। माता पिता उसे सिखाते हैं कि बेटा अपने नोट्स किसी को मत दिखाना, नहीं तो वो तुमसे आगे चला जाएगा। घर में भी इकलौता है, जहां पढ़ता है वहां भी थोड़ी लोगों से दूरी बना के रखता है और जब छुट्टियां होती हैं तो कोई ना कोई कला सीखता है, पेंटिंग, सिंगिंग, तैराकी, घुड़सवारी वगैरह वगैरह, वो भी बहुत सारे सर्टिफिकेट उसके पास। और ये बच्चा इतनी लगन से पढ़ता है कि 30 साल में एक कंपनी का जीएम बन जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसपास के लोग माता पिता को बधाई देते हैं, बच्चे को भी बहुत बधाई मिलती है। और जैसे ही एक कंपनी में जॉब ज्वाइन करता है, क्योंकि इसकी पोस्ट बड़ी है, इसके नीचे कई सुपरवाइजर हैं और भी कई इसके सबॉर्डिनेट हैं, तो जब ये पहले दिन जाता है तो देखता है कि कुछ लोग खुसर पुसर कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी आयु का जीएम बन गया, इसको कुछ अनुभव तो है नहीं। कुछ लोग कह रही हैं कि कई दिन से हमारी तनख्वाह पेंडिंग है, वो बढ़नी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें छुट्टियां कम मिलती हैं, हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। कुछ लोग काम चोर हैं, कुछ लोग समय पर नहीं आ रही हैं, कुछ लोग दूसरे लोगों की शिकायत इसके पास लेके आते हैं। तो पहले दिन ही इसको लगता है कि जॉब तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बातें तो मैंने जीवन में कभी देखी नहीं थी, आज तो कभी आई नहीं। घर में भी अकेला था, स्कूल में भी बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सीखो सीखो सीखो, टीम स्पिरिट बनाना, लोगों की बातें सुनना, उनका समाधान करना, उनको सहन करना, ये सब कुछ तो आया ही नहीं था। अब ये घर में आता है तो माँ देखती है कि बच्चे का चेहरा उदास, पूछती है बेटा क्या हुआ, सैलरी ठीक है, जॉब ठीक है, हाँ माँ सब कुछ ठीक है, माँ को कुछ नहीं बताता। तो माँ सोचती है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब इसको एक साथी की जरूरत है, तो इसकी शादी कर दी जाए। अब एक लड़की ढूंढी जाती है, वो भी इकलौती, वो भी बहुत पढ़ी लिखी, और उसके साथ इसकी शादी हो जाती है। ये ऑफिस में प्रतिदिन उसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके पास बहुत सर्टिफिकेट है, लेकिन न तैराकी वाला सर्टिफिकेट काम आया, न घुड़सवारी वाला काम आया, न पेंटिंग वाला काम आया, न सिंगिंग वाला काम आया, न प्लेइंग वाला काम आया, क्योंकि वहां चाहिए थी सहन शक्ति, सुनने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति, समाधान की शक्ति, वो तो पढ़ाई में कभी था ही नहीं। और जब ये घर लौटा तो वो जो घर में लड़की आई है वो आती ही कहती है कि ये जो पर्दे हैं इनका रंग पीला है, मुझे इस कलर से बहुत नफरत है, मुझे अभी अभी रेड कलर के पर्दे चाहिए, अभी अभी, अगर नहीं आते हैं तो मैं अपने घर जाती हूं, जब पर्दे आ जाएंगे तब मैं आ जाऊं। अब एक तो ऑफिस का टेंशन और घर में आकर के ये डबल टेंशन, तो अब ये क्या करें। इतने में इसका एक दोस्त आता है, कहता भाई तू उदास क्यों बैठा है ऐसे ही। अरे नहीं नहीं चल मैं तेरे को जन्नत के दर्शन करवाता हूं, और इसको पकड़ के ले जाता है। और आपको पता है आधुनिक संसार की जन्नत कौन सी है, इसको थोड़ा सा लाल पानी पिलाता है। अब मन इसका पहले ही कमजोर था और अब इसका तन भी कमजोर हो गया। यूनिवर्सिटी का टॉपर, 30 साल में जीएम बनने वाला, लेकिन 31वें साल में लाल पानी पी के शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अशांति और बढ़ती है, शरीर कमजोर होने लगता है, आदत पड़ जाती है, लाल पानी के बाद फिर और कई आदतें पड़ती हैं, और धीरे धीरे घर में देरी से आना, घर में झगड़े होना, देरी से उठना, शरीर टूटना, सिर में दर्द होना। 32 साल की आयु में इसको पहला अटैक आता है, 35 साल की आयु में दूसरा अटैक आता है, और 40 साल की आयु में तीसरे अटैक के साथ राम नाम सत्य हो जाता है। कहते हैं टॉप पे पहुंचना सरल है, लेकिन टॉप पे पहुंच करके स्थिर होना, हमें केवल टॉप पे नहीं पहुंचना है, हमें स्थिरता चाहिए, स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ऊंचाई पे तो हम बहुत गति से चले जाते हैं, ये भी बहुत गति से ऊपर गया क्योंकि पेरेंट्स बैकअप कर रहे थे, पैसा था और कोई काम ही नहीं था। लेकिन जब जीवन की जिम्मेवारियां आई, तब न तो पेरेंट्स काम आए न पैसा काम आया, तब किस चीज की जरूरत थी, मनोबल की, आध्यात्मिक बल की। लेकिन इस बच्चे की दौड़ केवल एक पांव की दौड़ थी। जब हम चलते हैं तो दोनों पांव से चलते, एक पांव जमीन पे रखते हैं, दूसरा पांव ऊपर उठता है, वो रिलैक्स हो जाता है, और फिर उस रिलैक्स पांव को जमीन पे रखते हैं, और जो रिलैक्स हो चुका था, जो चल रहा था उसको उठाते, वो रिलैक्स हो जाता है। और ऐसे करते करते हम 2 माइल 3 माइल भी चल पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए हम एक पांव को ऊपर बांध लें, जैसे कई बार खेल में बांध लेते हैं, जिसको हम बाधा दौड़ बोलते हैं, लंगड़ी दौड़ बोलते हैं, तो एक टांग से उछलते उछलते हम गेट तक भी पहुंचेंगे तो हांफ जाएंगे, सांस चढ़ जाएगा, गिरने को हो जाएंगे। तो ये केवल भौतिक उपलब्धियां हमारी एक टांग की दौड़ है, ये हमें थकाती है, झुंझलाती है, दिशा भटकाती है, सारे द्वार बंद कर देती हैं। अगर जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश हो, आध्यात्मिक संबल हो, भीतर उतरने की कला हो, तो जब व्यक्ति बाहरी जगत में स्पर्धा पाता है, बाहरी जगत में अशांति पाता है, तो वो दौड़ करके भीतर जाता है, और भीतर उसे मिलता है एक सुकून, एक शांति, एक आराम, और उसमें उसकी खोई हुई एनर्जी लौट आती है, और वो पुनः एनर्जेटिक होकर के उस स्पर्धा में फिर दौड़ने लगता है। लेकिन एनर्जेटिक होने का कोई मौका ही नहीं, बताया ना बाह्य जगत में शराब है, सिगरेट है, व्यसन है, चाहे आप पहाड़ों पे घूम लो, बाजार में घूम लो, समोसे भटूरे खा लो, वो सब चीजें तो आपके शरीर में जा रही, लेकिन एनर्जी डिप्लीट कहाँ हुई है, माइंड की, मन की, सोचने की शक्ति क्षीण हुई है, निर्णय शक्ति क्षीण हुई है, वो कुछ खा करके पी करके घूम करके लौट नहीं सकती, वो तभी लौटेगी जब आप स्वयं को पहचानेंगे, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचानेंगे। जब आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचान करके शांति के स्रोत से जुड़ेंगे, ऊर्जा के स्रोत से जुड़ेंगे, तो मानवीय स्तर पर अस्थिरता का कारण क्या है, एक पांव की दौड़। और जब हम उलझते हैं तो ऐसे गिरते हैं कि कोई हमें उठा भी नहीं पाता है, क्योंकि उठना होता है अपने दम पर और अपने भीतर दम है ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि मानवीय जीवन में स्थिरता आए तो हम अपने बच्चों को दोनों पांव दें, उन्हें भौतिक उड़ान भराएं, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक संबल भी दें। जब भौतिकता चोट मारे तो आध्यात्मिकता गोद में ले ले, आध्यात्मिकता स्पर्श करके उसका लालन करे, उसका पालन करे, उसमें आशा भरे, हिम्मत भरे। कई लोग कहते हैं बहन जी आध्यात्मिकता तो पुराने जमाने की चीज, फिर हम आधुनिक जगत में आगे कैसे बढ़ेंगे, पुरातनपंथी हो जाएंगे। कुछ मूलभूत चीजें होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ये जो पांचों तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये भी तो पुरातन समय के हैं, बाबा आदम के जमाने के। क्या हमने कभी कहा कि पानी पुराना हो गया उसको ना पी करके कुछ नया पिएंगे? भाई जमीन पुरानी हो गई इसके पांव ना रख के कोई नई जगह पांव रखेंगे? आज से हजार साल पीढ़ी के लोग भी जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश का उपयोग कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि मूलभूत चीजें। लाइक दैट, शांति कभी पुरानी नहीं होती, प्रेम कभी पुराना नहीं होता, पवित्रता कभी पुरानी नहीं होती, आनंद शक्ति ज्ञान ये आत्मा की मूलभूत आवश्यकताएं, उसके इंग्रेडिएंट। तो इन तक जब तक हम लौटेंगे नहीं तब तक बैलेंस कैसे होगा, तब तक स्टेबिलिटी कैसी होगी? बिना आधार के पेड़ की रंग बिरंगी डालियों से कितनी देर झूलेंगे? वो डालियां हमें गिराएंगी, क्योंकि पेड़ का आधार नहीं है। तो व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता का आधार चाहिए। और फिर हम सामाजिक जीवन में आते हैं। अगर हमें समाज में स्थिरता लानी है, समाज की व्यवस्थाओं को स्थिर करना है, हम देखते ही हैं कि समाज हमारे पालन पोषण में कितना कुछ लगाता है। एक बच्चा कुछ लेके थोड़े आता है, समाज से वो स्कूलिंग लेता है, समाज के लोगों के आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है, समाज से भाषा सीखता है, समाज की बनी प्याऊ पे वो पानी पीता है, समाज के हॉस्पिटल में दवा लेता है, समाज के लगाए बगीचे में वो खेलता कूदता है, समाज के लगाए पेड़ों की छाया में बैठता है। और ये सब लेते लेते वो 21 साल का हो जाता है। अब समाज उससे क्या अपेक्षा करता है कि ये रिटर्न करे, ये लौटाए? लेकिन 21 साल का होते ही वो कहता है तुमने हमारे लिए किया क्या है, सारे किए किराए पे पानी फिरा देता है। बाप दादों ने जो धर्मशाला बनाई उसकी वो ईंटें भी उखाड़ लेता है, बुजुर्गों ने जो बगीचे लगाए उसमें से गुलाब के पौधे उखाड़ के अपना घर का बगीचा बनाता है, और जो तालाब और नदी थे उनको वो अपने स्वार्थ के लिए गंदा करता है। तो समाज का क्या हुआ, दोहन हो गया, समाज की व्यवस्थाएं विकृत हो गई हमारे स्वार्थ के कारण। अगर हम आध्यात्मिक होते तो बुजुर्गों ने एक बगीचा लगाया हम दो लगाते, बुजुर्गों ने एक धर्मशाला बनाई हम दो बनाते, क्योंकि हमें समाज के ऋण से उऋण होना है। उन्होंने एक प्याऊ बनाई हम दो बनाते, नहीं बनाते तो एटलीस्ट उसमें कोई ना कोई योगदान देते। लेकिन समाज की चूलें हिल गई, क्योंकि हमने पहले समाज से लिया और फिर बच्चों के नाम पे, परिवार के नाम पे, क्योंकि मुझे परिवार पालना है, बच्चे पालने, हमने समाज की सब व्यवस्थाओं का दोहन कर लिया। फिर हम और आगे बढ़े, आर्थिक क्षेत्र में भी हमने यही किया, कमाई कमाई कमाई, मूल्यों का उन्मूलन, मूल्य धराशायी हो गए, पर्यावरण का भी ऐसे ही किया। आज का मेरा छोटा सा लाभ मेरे से पूरा पेड़ उखड़वा देता है। मुझे एक पेड़ का एक फल चाहिए और वो भी कच्चा है, उस कच्चे फल के लिए मैं उस पेड़ की पूरी डाली तोड़ के फेंक देती हूं स्वार्थ के लिए। हमने क्या क्या किया। अगर मेरे पास वो आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक सूझ और आध्यात्मिक आनंद होता तो मैं प्रकृति को फॉर फन यूज न करती, प्रकृति को अपने आनंद के लिए प्रकृति का मिस यूज न करती, क्योंकि आनंद भीतर है। तो जब तक हम आध्यात्मिक पांव नहीं लगाएंगे हमारे विकास को, तब तक स्थायी प्रणाली का निर्माण नहीं होगा, चाहे वो मानवीय, चाहे पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, जो भी क्षेत्र है। हमें आध्यात्मिक मूल्यों को साथ लेके चलना है। आध्यात्मिक मूल्य सदा बहार हैं, कभी पुराने नहीं होते। जैसे हम आधुनिकता को लेके चल रहे हैं, ऐसे ही हमें आध्यात्मिकता को भी साथ लेकर के चलना है। यही बैलेंस। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय उर्मिला दीदी जी का। आपने हम सभी को ये प्रेरित किया कि जब तक हम बच्चों में पहले से आध्यात्मिकता और निस्वार्थ रहने का गुण पैदा नहीं करेंगे तो स्वार्थी समाज हमेशा अस्थिर ही रहेगा। स्थिरता तभी आ सकती है जब निस्वार्थ भावना अंदर में पैदा होगी, और निस्वार्थता आध्यात्मिकता से ही पैदा होती है, अन्यथा वो पैदा नहीं हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से आप सभी दीदी का शुक्रिया करेंगे। और अभी हम सभी के बीच में ब्राता रवि नापा जी हैं, एडवांस्ड पावर सोर्सेज लिमिटेड के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आप वलसाड से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। आपका हम बाबा के इस घर में बहुत बहुत स्वागत करते हुए दो शब्द आपके लिए कहना चाहेंगे। हर पल दुनिया में आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, दुआ है हमारी एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। ऐसे महान उद्योगपति का बाबा के इस घर में बहुत अभिनंदन, अभिवादन, और उसके साथ आप अपने सूक्ष्म में विचार हम सभी के सामने रखेंगे।
थैंक यू। थोड़ा से हिंदी, थोड़ा से इंग्लिश, दोनों मिला के मैं बात करूंगा। अभी इन्होंने चार इश्यूज रेज किया, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एक है ह्यूमन इश्यूज, ह्यूमन रिलेटेड वैल्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, बिकॉज ऑफ विच हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे। सस्टेनेबल सिस्टम, नो सिस्टम कैन बी स्टेबल, एवरी सिस्टम विल बी कंटिन्यूअसली टू बी मेड stable, it is continuously going to change. So we will assume that it is, we are working for a system which will have long-term stability, long-term sustainability. Truthfully speaking, it is long-term sustainability. Whether it is a human value or it is a social value or economic values issues or environmental issues. First, ह्यूमन इश्यूज इन्होंने रेस किया। अभी हम घर खरीदने जाते हैं, टू बेडरूम किचन, फोर बेडरूम किचन खरीदते हैं, कितनी बार हम एक पूजा रूम होना चाहिए करके हम ढूंढते हैं। वेरी फ्यू। मैं बड़े बड़े घर में जाता हूं तो वहां पूजा के रूम सबसे छोटी रहते हैं एंड एडजस्ट किया जाता है किचन में या बेडरूम में कहीं, या ऐसा जगह भी होता है जहां पूजा रूम होना नहीं चाहिए, ऐसा जगह भी उसको एडजस्ट किया जाता है। स्पेसिफिकली इफ यू गो टू मेट्रोस यू कैन फाइंड दिस वेरी इजीली। रोज सुबह उठते ही हम अपनी कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड, किसको देंगे? भगवान को देंगे। जिस जगह हमें सभी चीज मिल रहे हैं उस जगह को हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट करके, लिस्ट मुख्यता हमने उसको दिया है। हम घर खरीदते हैं तब वही करते हैं। अब हमारे बच्चों से हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, वो दूसरा वैल्यूज लेके आए। तो पहला चीज है, हम टू शो आवर ग्रैटिट्यूड टू गॉड और एनीबडी एल्स, वी शुड अलॉट स्पेसिफिक स्पेस एंड टाइम। मोस्ट ऑफ अस आर टू बिजी, मोस्ट ऑफ द टाइम पूजा करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ को दिया जाता है ना। अगर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं भगवान को, हमें करना चाहिए फर्स्ट, और हर रोज एक ही टाइम पे करना चाहिए, और बच्चों के साथ लेके करना चाहिए। दिस इज द सॉल्यूशन, आई एम गिविंग यू सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। वी शुड हैव ए स्पेसिफाइड लोकेशन फॉर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू द गॉड इन द नेम ऑफ पूजा रूम। व्हेन वी आर डूइंग पूजा से एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, all the children including the wife should have taken bath. Sometimes people do puja in night gown also without taking bath. This kind of culture should be created. How this culture will be created? It should become a habit in our house. Habit over a period of time will become a value for the family. From that value you will create a continuous process it will become culture of the family, then it becomes a religion over a long period of time, say 500 years, or a habit will be having a period of 1 day or 2 day or 3 days. A value will take at least 1 year, a culture will take 5 years, but a religion will take at least 100 years. If my father was doing puja every day, I am doing it, so my child also will do. Second aspect of this social problem is, nowadays we are believing micro families. Father and mother do not like children. Children also do not like father. Father and mother. The concept of micro families have created a lot of problem in the families. So the distance between the current generation and the older generation has increased. But the habits are different, the environment. I started my career with a cycle. My children have started a career with car. If you try to explain them the difficulties faced from bicycle to car, they are not going to understand. So you also have to become from car. So continuously bringing the notice to the children, I have worked hard is a nuisance. You don't have to say that. The output of your hard work is already seen by your children. You don't have to tell them continuously that I have worked hard, you have to respect me like that. We have to continue with larger families, or more guests should come to our family. Lot of guests should come to our family, or we should live with a larger family. So sharing of whatever it is, whether it is food or whether it is material or whether it is assets, will be a continuous process from the childhood. These two things, one is a value based home, and the sharing of assets is no more existing in the family. So this has to be created first. Then coming social issues. Social issues are always comparable. What my friend is having, I also should have. What my neighbor is having, I also should have. This comparison is coming because you are not happy or you are not satisfied with what you are having. When I was reading Ramayana, there was a incident in Dasharath ki time par daan lene ke liye koi ready nahi tha. Does it mean that there are no people in Dasharath kingdom? If in Dasharath's kingdom, unke rajya mein daan lene ke liye koi tayari nahi hai, iska matlab ye hai ki Dasharath ki rajya mein koi gareeb nahi tha. Yes. Everybody was trupped. I am happy with what I am having. will create a better society than a competitive society which is always comparing with my neighbors and others. Today what we are teaching our children? You always should come from first rank. You always should go to IIT. You always should go to IIM. That means our child only should be number one. Rest of the children should become number two onwards. So moment your child is getting second rank or third rank or whatever it is, immediately you show your dissatisfaction. Now your child is trying to satisfy you or is trying to satisfy his ability. You are not allowing him, to grow in his capabilities. You are trying to realize your dream in him, and you are expecting that he will become a socially responsible person. That is not going to happen. So what is the next solution? My children are grown, now I have a grandchild. So we should cultivate a learning process towards what she or he is going to enjoy in the rest of the life. Not at the age of 1, 2, 3 itself, we put a competitive spirit into it. Competition is always dangerous. We are in the business, so we know that how competition is spoiling relationship with one another. Then is economical issues. Economical issues means there are lot of available products and less demand. Why lot of available products are there? Because every supplier wants to engage with the limited number of customers. Even if you go to a school, it is happening like that. So the mool karan is kaha apne desires. So we have to reduce our desires so that the economic pressure will come down. Fourth problem raised is environmental issues. The pressure on environment also is directly proportional to our desires. We have to reduce our desires. We should be satisfied with our needs rather than our greed. By these four strategies, we can change the internal environment in our house and external environment in the society. At the same time, we create an agile environment where the family member and society environment are mutually acceptable in living. So I hope I have given a few solutions, madam. Maine kuch solutions diya apni problems ke liye. Thank you very much. Dhanyawad.
Bahut bahut shukriya RJ Napa bhai ji. Aapne apni taraf se bahut sare kis tarah se is asthirta ko sthirta mein laya jaye उसके लिए वैल्यूज के ऊपर आपने ध्यान खिंचवाया है. लेकिन नंबर वन कंपटीशन बाह्य रूप से नहीं, लेकिन जब आध्यात्मिकता और वैल्यूज में कोई नंबर वन जाएगा तभी इस समाज को हम स्थिरता प्रदान कर सकेंगे. अन्यथा यह समाज दिन प्रतिदिन अस्थिर होता जा रहा है, उसके हम सभी साक्षी हैं. पुनः आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, आपने अपने कीमती विचार हम सभी के बीच रखे. अभी हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय भ्राता द्वेशचंद्र मिश्रा जी, आप हमारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल ऑयल महारत्ना कंपनी ONGC में करीब 4 दशक कार्य करते हुए आप GM के पद से सेवानिवृत्त हुए. वर्तमान में ONGC के एडवाइजरी बोर्ड के आप मेंबर हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी में आप विजिटिंग फैकल्टी हैं. द्वेश मिश्रा और उनके युगल एडवोकेट हेमा मिश्रा, जो कि मुंबई हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस में हैं, आपने 2015 में बाबा का ये ज्ञान प्राप्त किया. राज्यों की इस शिक्षा को आपने ग्रहण करते हुए वर्तमान समय आप बाबा के बहुत ही प्रिय बच्चे बनकर के इस योविंग के आप लाइफ मेंबर बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपके युगल जूरिस्ट विंग के भी लाइफ मेंबर बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे आप अपने इस लाइफ में अपने कार्य में साइंटिस्ट होते हुए चलते रहे तो आपको बहुत सारे अवार्ड अपने इस जीवन में प्राप्त हुए हैं। अगर आप उनकी गिनती सुनना शुरू करेंगे तो मैं समझती हूं कि आप सभी का सारा समय शिवानी बहन वाला भी यहीं निकल जाएगा। तो आप इतनी महान हस्ती हैं, तभी तो भगवान की नजर भी आपके ऊपर पड़ी और वो केवल पड़ी नहीं, आपके ऊपर ठहर गई और ठहरी ही नहीं, उसने आपको चुन करके अपना बच्चा बना लिया। उस परमात्मा को आप उनके काम के नजर आए, क्योंकि साइंस के साथ जब आध्यात्मिकता जुड़ जाती है तो आध्यात्मिकता जुड़ने से ही यह साइंस विश्व नवनिर्माण का कार्य कर सकती है, अन्यथा तो ज्यादातर विनाश के कार्य के लिए साइंस तैयारियां कर रही है। तो उसी कार्य के लिए शायद परमात्मा ने आपको अपने इस कार्य के लिए चुना है। तो आप हम सभी के बीच में अपने सुंदर अनुभवों के साथ उपस्थित हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोग एक खूबसूरत सी शाम से होते हैं, अजमत से ऊंचे मकाम से होते हैं, बनकर किरणें बिखेरते हैं रोशनी। कुछ लोग अपने ही नाम से होते हैं, कुछ लोग अपने ही नाम से होते हैं। तो आप अपने नाम के साथ साथ परमात्मा पिता का नाम रोशन करने के लिए बाबा के बने हैं और आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। भ्राता द्वेश मिश्रा जी,
धन्यवाद। बीके निर्मल बहन, आपने जो हमारे बारे में कहा, कहाँ तक हम उस चीज को कर पाएंगे, ये ईश्वर की कृपा रहेगी। एक बार हम सभी लोग प्रेम से ओम शांति का उच्चारण करें। ओम शांति। मंचासीन हमारी आज की चेयरपर्सन राजयोगिनी उर्मिला बहन और मुख्य वक्ता राजयोगिनी उर्मिला बहन, चेयरपर्सन डॉक्टर अरुणा बहन, आज के मुख्य अतिथि नापा जी और संचालिका बीके निर्मल बहन, और आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण बहनों और भाइयों और बाबा के सभी प्यारे प्यारे बच्चों, हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि आज के दिन ज्ञान सरोवर के इस मनोहारी प्रांगण में साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग के सौजन्य से हमें ये अवसर मिला कि आज के इस प्रासंगिक विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना, हमारे जो हमारी मेन स्पीकर बहन ने जो अभी चर्चा की, उर्मिला बहन ने, और हमारे मुख्य अतिथि नापा जी ने उनके कुछ सोल्यूशन दिए, और हमें जो जिम्मेदारी मिली है कि हमारे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से हमने इन चीजों को किस तरह से कार्य में लाया, इस चीज को शेयर करें। जैसा कहा गया कि हम पिछले करीब 10 सालों से ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में रहे, तो संपर्क में आने के बाद हमने अपने व्यवसाय में किस तरह से उन मूल्यों को कार्य रूप में लाया, इसके कुछ दो चार छोटे छोटे हम एग्जाम्पल्स आपको देंगे, जो कि आपको लगेगा कि आपके जीवन में भी इस तरह से आते होंगे। और उसमें आपको यह दिखेगा कि आज के प्रगति के दौड़ में, इस रेस में, हम शायद कुछ मूल्यों को इतने पीछे छोड़ आए, हम अपनी आध्यात्मिकता से इतने दूर हो गए, हम अपने पन से इतने दूर हो गए कि प्रगतिशील होने के बावजूद भी हमें सुख शांति समृद्धि संतोष ये चीजें नहीं मिल रही हैं। और कई बार लगता है कि हम तो आज से कई दशक पहले जो थे वही अच्छे थे, जो कि हमारी सही सोच नहीं है। हमारा एक एम्बैरेसमेंट है, हम आज प्रगतिशील हैं, आज विकास की जिस सीढ़ी पर हैं, हमको उसे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जैसा कि अभी उर्मिला बहन ने कहा और कुछ सोल्यूशन भी नापा जी ने कहा, हम उसको अपने मानविक मूल्यों से दूर होते चले गए। अब देखिए, हमको हमारी एक कंपनी है, अभी रिटायरमेंट के बाद मैं 2017 में ONGC से मैं रिटायर हुआ सक्रिय क्षेत्र से। तो अभी हम कुछ एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं जैसा बहल ने कहा, और हमारी एक एजुकेशन की कंपनी भी है जिसका नाम इंग्लिश लॉन्च है, और वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के आर्ट को सिखाती है। उसमें इंटरनेशनल रिप्यूट के टीचर्स हैं और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, विद इन इंडिया एंड अब्रॉड भी हैं, जहां इंग्लिश इस कंट्रीज में नहीं है। अब देखिए, ये घटना जो मैं सबसे पहले आपको सुना रहा हूँ ये कुछ दिनों पहले की है, 7-10 दिन की, और इसका सलूशन पिछले 2 दिनों में जो निकला, आपको लगेगा कि शायद उसमें थोड़ा मानवीय मूल्यों को ऐड करने से उसकी ब्यूटी कैसे बढ़ती है। अब वन ऑफ अवर एजुकेटर्स, सी हैड सम प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो हमारी कंपनी है वो ऑनलाइन क्लासेस लेती है, तो हमारे एक टीचर के पास कुछ इश्यूज आए, उनका लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने अपने ग्रुप पर ये शेयर किया कि 2-4 दिनों में वो ठीक हो जाएगा तो हम क्लासेस आगे डेफर कर देते। पिछले 1 सप्ताह में ये चर्चा हुई, उसके बाद 4-5 दिनों के बाद फिर उन्होंने लिखा कि लैपटॉप रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू लैपटॉप सून और फिर आपके क्लासेस लिए जाएंगे। एंड दैट टीचर इज अ स्टूडेंट, सी इज अ मेडिकल स्टूडेंट फाइनल ईयर, लेकिन उनकी इंग्लिश की शैली बहुत अच्छी है एंड सी इज अ एजुकेटर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट। मैंने सोचा कि इस बच्ची के पास अभी लैपटॉप जो था वो काम नहीं कर रहा है, इसको परचेज करना है, हमारी कंपनी की ये एजुकेटर है, तो क्यों ना हम इनको 3 महीने का एडवांस प्रस्तुत कर दें तो इनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो हमने उनको मैसेज कर दिया कि इंग्लिश लॉन्च प्रपोजेस टू एक्सटेंड यू 3 मंथ्स एडवांस फॉर परचेजिंग जैसे टोकन एडवांस। अब आपको मैं बताऊं कि वो ये प्रपोजल पाकर वो इतनी खुश हुई, उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू मी, और मैं कल की ही बात है तो हमने उनको 3 महीने का एडवांस भेज दिया। अब आप ये देखिए, हो सकता था कि अगर 1-2 दिन मैं और ऑब्जर्व करता तो शायद वो प्रपोज करती हमें कि क्या हमें कुछ एडवांस मिल सकता है, लेकिन हमको आप ये कहिए कि श्रीमत आई या मन में हमारा ऐसा विचार आया तो क्यों ना हम ही प्रपोज कर दें। तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, कार्य हम करते हैं लेकिन वैल्यूज उसमें नहीं रहने से उसका प्रतिफल उस तरह का नहीं हो पाता। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। अब हमारे ऑयल इंडस्ट्री में आप देखिए, 2-4 छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ये जो इंडस्ट्री है, आप देख रहे हैं कि ऑयल और गैस से जितने आपके व्हीकल्स चल रहे हैं, घरों में गैस के चूल्हे चल रहे हैं, सारी चीजें ये कंपनी ONGC के थ्रू, ऑयल इंडिया के थ्रू आता है। और ये जो तेल और गैस जमीन से निकाला जाता है, 2 तरह के वेल्स होते हैं, एक तो लैंड पर होते हैं और दूसरे समुद्र में। लैंड पर जो वेल्स होते हैं उसके ऊपर एक वेल पर करीब 30 से 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, कंपनी के जो पैसे हैं गवर्नमेंट का है, हम आप लोगों का है, और जो समुद्र में वेल्स हैं 300 से 400 करोड़ रुपए, और एक वेल को ड्रिल करने में 1 से 2 महीने लगते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा जो व्यवसाय है वो कितना उसमें पैसा लगता है प्रतिदिन, अगर ऑनलाइन के ऊपर 1 से 2 करोड़ रुपए और ऑफशोर में करीब 10 से 15 करोड़ रुपए। अब वो वेल ड्रिल हो रहा है, आप कंटेम्पलेट करिए किस तरह की सर्विसेज हम एक्सटेंड करते हैं। अब हमारी जो टीम काम कर रही है और प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है उसमें समस्याएं आती हैं, तो और उसको फिर रिजॉल्व किया जाता है। मान लीजिए कि अगर वो वेल एक दिन के लिए बंद हो गया तो हमको 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान है, तो वी कैनॉट अफोर्ड, कुछ घंटों में ही वो चैलेंजेस को सुधारना है। तो वो डेली का प्रोसेस है, वो DPR आती है और वो बताया जाता है। तो जब ये मैं आपको 2014 से 2017 की बात बता रहा हूँ, जिस समय मैं गुजरात सेक्टर में इस ऑपरेशन को मैं हेड कर रहा था, तो वो कहते थे सर ये प्रॉब्लम है इन वेल्स में, ये प्रॉब्लम है। हमने कहा देखो भाई, अब प्रॉब्लम के बजाय इसको चुनौती करके एड्रेस करो। तो उनको ये चीज अच्छी लगी, क्योंकि प्रॉब्लम सुन के डर लगता है, चुनौती सुन के आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। और कहा भी जाता है कि चैलेंजेस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम इंटिमिडेट। तो जब उन चुनौती को हम फेस करेंगे, जैसे कि अभी हमने कोरोना काल में चुनौतियों को फेस किया, देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज आई। तो हम उन सिचुएशन को, उन इश्यूज को जब एड्रेस करते थे, और वो रूटीन प्रोसेस है, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो बुलाए जाते हैं, मीटिंग होती है, 1-1.5 घंटे के अंदर सॉल्यूशन बनता है, उसको वेल पर भेजा जाता है और वो इशू रिजॉल्व हो जाता है, वेल काम शुरू कर देता है। तो प्रॉब्लम को चुनौती बोलने से लोगों को कॉन्फिडेंस आया। और आपको जान के अच्छा लगेगा, ये बात 8-10 साल पहले की है और आज भी हमारे गुजरात सेक्टर में हमारे खुद के रिटायरमेंट के 8 साल हो गए, 7 साल, लेकिन वहाँ मोस्टली लोग कहते हैं कि आज की चुनौती क्या है, आज का चैलेंज क्या है। तो इस तरह की चीज। दूसरी मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे जब उस पोजीशन को, जो उस सेक्टर को हेड कर रहे थे, उनका ट्रांसफर हुआ और उन्होंने हमको वो चार्ज हैंडओवर किया, तो चार्ज हैंडओवर करते समय उन्होंने 2-3 चीजें हमें बताई। उन्होंने बताया कि देखिए ये आपकी जो टीम है इसके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, कोई घर का प्रॉब्लम, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, ये, और मैं तो कभी कभी परेशान हो गया, इन प्रॉब्लम्स को देखो कि हम अपने प्रोफेशनल टारगेट्स को देखें, तो जरा आप देखिएगा, तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिएगा। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि देखिए हमारी टीम में एक बहुत सीनियर मेंबर आए हैं जो कलकत्ता से, 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 6 महीने से मेडिकल लीव पर हैं। तो मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैंने कहा कि अब कोई लीव नहीं दी जाएगी, तो अब आप देखिए आपको क्या करना है। अब ये 2 इश्यूज को मैं 2-3 मिनट में, समय है ना,
शिवानी दीदी की क्लास भी है,
अच्छा अभी भी है,
शाम को भी,
अच्छा तो बस मैं 2-3 मिनट में, नहीं वो तो जहाँ नहीं उनका वो 24 घंटे से कम समय के लिए ही थी, शायद तीसरा सेशन हो गया। एनीवे हमको तो वैसे भी, क्योंकि हमारी चेयरपर्सन का भी इशारा है कि समय कम है, तो अब मैं बताऊं। अच्छा मैं ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में ऑलरेडी था, तो मुझे लगा कि भाई स्ट्रिक्ट होकर किसी से कितना काम आप ले सकते हैं। ठीक है हमारे मित्र ने कहा, लेकिन मैंने जब मीटिंग करी अपने ग्रुप की, तो हमने उनको ये कहा कि भाई देखिए मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप, आपका परिवार, आपका घर, अगर सुख शांत नहीं है तो आप परफॉर्म क्या करेंगे। तो मैं प्रायोरिटी दूंगा कि अगर आपके साथ कोई चुनौती है वो काइंडली अगर आप हमसे शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, हमारा एक परिवार है और हम मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ छुट्टी की आवश्यकता है तो आप छुट्टी ले लीजिए, लेकिन उन समस्याओं को सुलझा के उसके बाद आए। और इसका ये परिणाम हुआ कि लोगों ने कहा कि अच्छा छुट्टी मिल सकती है, और हमने देना शुरू किया, एक दिन की, दो दिन की, जो भी छुट्टी है। लेकिन हमने कहा कि जब तक आप छुट्टी पर हैं तो आपके जो दूसरे सहयोगी हैं वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे, अगर वो नहीं ले सकते तो आप मेरे पास आइए। जब हमने ये कॉन्फिडेंस उनमें डिपॉजिट किया तो मैं आपको बताऊं, जो मुझको बताया गया था कि वो आप उनको उंगली पकड़ाएंगे तो आपका कंधा पकड़ लेंगे, किसी ने ऐसा नहीं किया। और अगले 3 महीने बहुत कम लोगों ने उस समय छुट्टी ली, और नेचुरली सभी अच्छे परफॉर्मर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो मैंने कहा कि हमारे मित्र बेकार ही हमें कह रहे थे कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना है, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस अपनी टीम में देंगे तो वापस आपको वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो ये मित्र जो हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस वाले थे, 6 महीने से मेडिकल लीव पर थे, तो मैंने अपने एचआर से पूछा हमारे क्या प्रोविजंस हैं, और मैं समझने के बाद हमने अपनी एमएससी को बोला कि उन्होंने 15 दिन की छुट्टी मांगी है, आप उनको 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि वैसे ही वो लीव विदाउट पे चल रहे थे। और उनको जब और ये लिखा कि जब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं तो आप हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब वो 1 महीने की छुट्टी मांगते थे 15 दिन की छुट्टी मिलती थी, 2 महीने के मांगते थे तो 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। जब उनको 15 दिन की छुट्टी पर 1 महीने की छुट्टी मिली, आप बिलीव करिए वो 15 दिन के बाद उन्होंने जो है लेटर भेजा कि हमको मेडिकल फिटनेस मिल गया है, और वो रियली काफी बीमार थे, वो आ गए। और जब वो आ गए उसके बाद, इस पर आप तालियां बजा सकते हैं कि जब हमने उसमें कॉन्फिडेंस रिपोज किया तो उन्होंने, उनको शायद लगा, और हम तो आत्मिक रूप से मैंने देखा ना, क्योंकि हम तो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में, हमने कहा कि अगर इस आत्मा में, और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उसके बाद वो आके उन्होंने ज्वाइन किया, और देखा मैंने कि उनको कुछ नर्वस ब्रेकडाउन था, चाय पीते पीते कभी उनकी हाथ से कप गिर जाता था। उसके बाद मैंने उनको सॉफ्ट जॉब दिया, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सारे पेपर्स उन्होंने लिखे, मैंने उनको एमएससी का हेड बना दिया। और मैं बताऊं कि अगले 6 महीने में उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा कि इस तरह से ये हमने देखा कि जिसको कि हमने डिक्लेयर कर दिया था कि ये व्यक्ति कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो व्यक्ति कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करने लगा। तो जो ह्यूमन वैल्यूज इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम अपने ह्यूमन वैल्यूज को छोड़ के अचीव करेंगे तो वो टारगेट अचीव होने के बाद भी संतुष्टि नहीं देगा। इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल थे, फिर मैं आपको बताऊं, हमने अपनी टीम को कहा जाता है, या जो प्रोफेशनल्स हैं वो जानते होंगे कि एक्सेलेंट एसीआर सिर्फ 10% को दिया जाता
है। सब लेट हो रहा है,
बस मैं अगले फ्यू सेकेंड्स में कंप्लीट करता हूँ। हमने अपनी टीम के 50% प्रोफेशनल्स को हमने A+ CR दिया, और आपको मैं बताऊं कि हमारे टॉप मैनेजमेंट ने उसे एक्सेप्ट भी किया, और इस तरह से परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया। और हमने ये महसूस किया कि ह्यूमन वैल्यूज, हार्मनी और कंपेटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया कार्य हमेशा सफलता देगी, और ऐसी सफलता देगी जिसको कि हम रिज्वाइस कर सके। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश मिश्रा भाई जी का। रियल में होता क्या है कि जब आप भगवान के बनते हैं,
वन मिनट ओनली,
सॉरी
मेरे से कुछ गलती हो गया
जी।
सी इस सभा को मैं शुरुआत में आपको नमस्कार नहीं किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी ईश्वर स्वरूप को मेरी तरफ से नमस्कार।
भाई आप सभी नमस्कार स्वीकार कीजिए जोरदार ताली से। तो जब हम खुद वैल्यूएबल बन जाते हैं तब आप दूसरों के साथ अपने जीवन की वैल्यूज को जब शेयर करते हैं तो नेचुरल रिजल्ट अच्छे ही होते हैं, वो चाहे घर हो, चाहे फील्ड हो, चाहे आप कहां भी हैं। तो इसलिए यहां जो बात कही जा रही है वो वैल्यू को जीवन में धारण करने की है। जैसे जैसे हम वैल्यूएबल बनते जाएंगे तो नेचुरल है हमारे जीवन में सफलता हमारे कदमों में होगी, ऐसा परमात्मा हम सभी को सिखा रहे हैं। तो अभी हम इस कार्यक्रम के लास्ट में पहुंचे हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन हमारे परम आदरणीय हमारी अरुणा दीदी जी, जो कि 1991 में गुजरात विश्वविद्यालय में आपने अहमदाबाद से बीकॉम की डिग्री हासिल की, मार्केट मैनेजमेंट में आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया, उसके साथ साथ आपने स्व प्रबंधन, संकट प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन में मास्टर की डिग्री आपने और मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिक में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। आप गुणों से संपन्न हैं, आपकी जो विशेषताएं हैं आपको एक आध्यात्मिक नेता के रूप में हम कहेंगे खड़ा करती हैं। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक आध्यात्मिक शैक्षणिक सेवा के लिए समर्पित किया है। ब्रह्मा कुमारीज में आपका जुड़ाव उसके पीछे कारण रहा है आपके जन्मदात्री आपके माताजी जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, आपके लौकिक पिता जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन दोनों के गुणों का समन्वय आपके जीवन में जिसका प्रभाव आपके जीवन से प्रदर्शित होता है। दीदी की पालना पोषण सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक आध्यात्मिक मूल्यों के बीच हुआ जिसने उनके चरित्र को एक विश्व सेवाधारी के रूप में आकार दिया और उन्होंने अपना जीवन सामाजिक आध्यात्मिक और शैक्षणिक सेवा के माध्यम से दुनिया के नागरिकों की उन्नति के लिए अपने इस जीवन को समर्पित किया। आप एक सीनियर राजयोग शिक्षिका हैं, लगभग 35 वर्षों से आप इस आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन और राजयोग का अभ्यास करते हुए अन्य अनेक आत्माओं का को ये अभ्यास करा रहे हैं। दीदी जी पिछले 20 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय वडोदरा आत्मचिंतन भवन आठ लादरा के केंद्र की मुख्य संचालिका हैं। आपने खुद को आध्यात्मिक रूप से मानवता की सेवा में समर्पित किया है और सामाजिक मूल्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा कर रही हैं। अनेका अनेक संस्थाओं की अनेका अनेक आत्माओं की आप सेवाएं करते हुए हाल ही में वडोदरा की आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपनी श्रेष्ठ सामाजिक सेवाओं के सम्मान करते हुए साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। ऐसी सामाजिक सेवाएं करते हुए आप अपने जीवन को तो उन्नत महान बना रहे हैं लेकिन उसके साथ अनेका अनेक आत्माओं के जीवन का कल्याण करते हुए आप अपने बहुत ही खुशनुमा जीवन अपने लवफुल जीवन से मातृत्व पालना देते हुए अपने स्माइलिंग फेस से अनेका अनेक आत्माओं को खुशियां देते हुए आप अपने इस जीवन के उमंग उत्साह से अनेकों को उत्साहित करते हुए चल रहे हैं। ऐसी प्रतिभा की धनी महान तपस्वी योगिन आत्मा आदरणीय अरुणा दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसे कोई अल्फाज नहीं, महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से चमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आदरणीय अरुणा दीदी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने आशीर्वचन कहें, आप अपनी भावनाएं कहें, हम सभी के लिए प्रेरित करेंगे। आदरणीय अरुणा दीदी जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय उर्मला दीदी जी, निर्मला दीदी जी एवं हमारे मुख्य मेहमानों में आरजी नापा जी और देवेश मिश्रा जी और आप सभी परमात्मा के प्रिय संतान जो यहां उपस्थित है, आज के इस सेशन में हम देखें तो हमारी प्यारी बहन उर्मिला जी ने जो सुनाया कि जहां आध्यात्मिकता की कमी है, तो हम कितने भी चाहे एजुकेशन चाहे फाइनेंशियली कितने भी साउंड हो, लेकिन जहां इमोशनली साउंड नहीं है, एम्पावर नहीं है, तो हम कभी भी गिर सकते हैं। तो बात रही मूल्य की, कब से हम निर्मला दीदी जी को भी सुन रहे हैं, बहुत बीच बीच में अच्छी बातें सुनाई, सभी का वक्ताओं का सार भी सुनाया, हमारे आरजे नापा जी ने भी चारों बातों का कैसे वैल्यूज को हम भरे वो समझाया, साथ में मिश्रा जी ने भी कैसे हमारी लाइफ के अंदर या वर्क प्लेस पर भी वैल्यूज को डाले। तो बात यहां ही आके रुकती है कि जीवन में जीवन चार प्रकार की है, वो भी समझाई, क्योंकि समय कम है, ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जहां जीवन के अंदर हमारे मूलभूत वैल्यू आ जाते हैं तो जीवन ब्यूटीफुल बन जाता है। ऐसा जीवन जो दूसरों को सुकून देता है, सुख देता है, परमात्मा हमें इस यूनिवर्सिटी में समय की पुकार में यही समझाते हैं कि सबको दुआ दो, सभी को दुआ दो, कोई कैसा भी है, आपको पसंद नहीं है, उसका स्वभाव भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना संस्कार बना दिया देने का संस्कार, तो दुआएं आपको तो ठीक है लेकिन आपके आसपास के वातावरण को, आसपास के व्यक्ति प्रकृति सभी को सुकून देगा, सुख देगा। इसीलिए एक ही चीज कहनी पड़ेगी कि मुझे कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो क्यों किया, वो भी तो हम एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं ना? तो इन सभी चीजों से हमें ऊपर उठना है, और जब सभी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे और आध्यात्मिकता को ऊपर उठा लेंगे तो नीचे की बातें तो अपने आप ठीक हो ही जाएगी, और वो दातापन का जो संस्कार है आपका अंदर का, तो आप हर चीज को देंगे, हर चीज को, हर व्यक्ति वस्तु वैभव हर जगह आपके इतने अच्छे वाइब्रेशन फैलते जाएंगे, और समाज भी आपको देख करके देना सीख जाएगा, आपसे कुछ सीखेगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल देना ही है, बस ये आज के समय की पुकार है। अगर हमारी मनसा को हमने इतना स्वच्छ बना दिया, जिसको परमात्मा कहते हैं, दिमाग को खाली करो और दिल को साफ करो, इसलिए रोज रात को परमात्मा कहते हैं पत्र लिखो परमात्मा को, और इसमें क्या करो, दिल की बातें परमात्मा को सुना दो, तो दिमाग क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और दिल माना बुद्धि, बुद्धि क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी, जब दिमाग खाली बुद्धि साफ तो किसके साथ जुड़ जाओगे, उस परम शक्ति के साथ, उस स्रोत है, आता जाएगा और देते जाएंगे। तो परमात्मा ये भी सिखाते हैं हमें कि देना ही लेना है, आप जिसको जो देंगे वो आपको वापस रिटर्न मिलने वाला है। अगर ये स्कूल परमात्मा की हमने पढ़ लिया तो जीवन में कुछ बाकी नहीं रहता है पढ़ने का, सब कुछ कवर हो जाता है सब कुछ। तो आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए अभी हमें आगे के सेशन में भी जाना है, जो कि बहुत सुंदर सेशन है, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, जो कहते हैं कि इतना सुनने के बाद ये संस्था कैसे आगे बढ़ी, वो सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 2-3 दिन से मूल्यों को ही समझ रहे हैं, मूल्यों को ही समझ रहे हैं, तो मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो चीज समझ ली आपने तो इसके आगे का जो आपकी जर्नी है वो बहुत सुंदर रीति से आप कर सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी एक नेक्स्ट टू गॉड जैसे कहेंगे, वो भी एक दाता का अवतार थे। क्या है उसका जीवन चरित्र वो भी हम यहाँ से हॉल में जाके सुनेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा करेंगे, आपने बहुत सुंदर प्रेरणाएं हम सभी को दी। और अभी हम हमारे बीच में मेहमानों को परमात्मा के घर की ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगे, आदरणीय अरुणा दीदी, उर्मिला दीदी जी, डॉक्टर ब्रता आरजे नपा जी को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित कर रहे हैं। राता द्वेश मिश्रा जी को भी सम्मानित करेंगे, सौगात देंगे। अभी प्यारे शिव पिता का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करेंगे 2 मिनट साइलेंस से, और मन में संकल्प दृढ़ करते हुए अस्थिरता का एक छोटी सी बात कि पशु पंछियों ने अस्थिर नहीं किया, क्योंकि वो केवल जितना खाना होता है उतना ही लेते, उसके बाद बांधते नहीं है। एक इंसान ही है जिसको 24 घंटे पेटियां भरने की लगी रहती है, और वो पेटियां भी हमारी अस्थिरता का कारण बनी हुई हैं। इसलिए हम सभी बहुत श्रेष्ठ संकल्पों से गुणों के खजाने परमात्मा से जमा करते हुए प्यारे शिव बाबा का बड़े प्यार से शुक्रिया अदा करेंगे आज के इस श्रेष्ठ घड़ियों के लिए। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय दीदी जी का, हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय उर्मिला दीदी जी का, हमारे भ्राता द्वेश मिश्रा जी का, आरजे नापा जी का, सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आप सभी भाई बहनें जो बड़े प्यार से धीरज से बैठ करके जिन्होंने सुना, आप सभी का भी बहुत दिल से धन्यवाद शुक्रिया। और अभी आप सभी पुनः आत्म स्वरूप में टिकते हुए चलेंगे हार्मनी हॉल में, जहां आपके लिए अगला सेशन चालू हो चुका है।